नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। पैसे की ताकत चाहे जो कर ले, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, जैसा कि आप समझ सकते हैं। पैसे से कई बार बहुत सी चीज मुकाबला नहीं कर पाती, और प्रकृति भी एक है जिसको पैसे से कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ता है। संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और बहरीन ने कल यही हाल देखा है। ये दुनिया के वो इलाके हैं जो अपने सूखे रेगिस्तानों, चिलचिलाती गर्मी और चमचमाती इमारतों और वैभवपूर्ण जिंदगी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इन देशों का मौसम साल भर लगभग गर्म ही रहता है, और गर्मियों में तो बेहद गर्म हो जाता है। जहां आसमान में बादल दिखाई देने के लिए आंखें तरस जाती हैं, इन्हीं इलाकों के ऊपर से मंगलवार को काले बादलों का काफिला जो निकला, तो इतना पानी अपने साथ लाया कि कुछ ही घंटों में संयुक्त अरब अमीरात के शान और शौकत के भरी और ऊंची इमारतों वाले शहर दुबई तक को पानी में डुबा के रख दिया। तेल की दौलत से बने ईंट कंक्रीट के इस आधुनिक जंगल की सड़कों गलियों से पानी ऐसे बहने लगा जैसे कोई नदी बहती हो। सड़कों पर चल रही बेशकीमती और आधुनिक गाड़ियां पानी में डूबने उतरने लगी। दुबई में कुछ ही घंटों के अंदर इतना पानी बरस गया जितना 1.5 साल में बहता है। मंगलवार को 142 मिलीमीटर बारिश दुबई में दर्ज की गई, जबकि साल भर में औसतन दुबई में 95 मिलीमीटर बारिश ही मुश्किल से यहां हो पाती है, यानी 1.5 साल होने वाला पानी एक साथ बरस गया। यूएई के अल आइन अमीरात में तो सबसे ज्यादा 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसी से अंदाजा लग सकता है कि कितना पानी अचानक बरस गया। इस बरसात के लिए दुबई जैसा आधुनिकतम शहरों का मॉडल तैयार नहीं था, तो संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान के बाकी इलाकों का तो क्या ही कहना। दुनिया के दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एयरपोर्ट पर पानी इतना भर गया कि आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये हवाई अड्डा है या समुद्र का जहाजों का अड्डा है। शहर का ड्राइवरलेस मेट्रो सिस्टम तक भारी बारिश में नाकाम होने लगा। कई मेट्रो स्टेशन पानी में डूब गए। सड़कों पर लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर बाहर निकल गए, जिससे जहां शरण मिली वो वहीं रुक गया। दुबई का आपदा राहत विभाग, जो बहुत काबिल माना जाता है, वो भी कई घंटों तक राहत पहुंचाने में नाकाम सा दिखा। आसमान में चमकती बिजली और उसकी आवाज लोगों को डराती रही। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत और दुबई की पहचान बुर्ज खलीफा के ऊपर चमकती बिजली की तस्वीरें इस ऐतिहासिक मौसमी घटना की एक और पहचान बनती है। दुबई के लोगों ने इतनी बारिश कभी देखी नहीं थी, न ही सोचा था कि कभी उनके शहर का बरसात से यह हाल हो सकता है। इसी दौरान तूफानी बादलों की ये हरी सी तस्वीर भी दुबई के आसमान पर दिखाई दी। वहां के निवासी जिसको देखकर हैरान रह गए। बादलों में इस ग्रीन टिंट यानी हरी आभा को वैज्ञानिक भाषा में वायरिसेंस कहा जाता है। ये तब होता है जब कपास की गेंदों की तरह दिखने वाले कन्वेक्टिव क्लाउड यानी संवहनशील बादलों को नीचे की गर्म और नम हवा तेजी से ऊपर की ओर उठती है। इन बादलों को ऊपर की ओर सर्द तापमान से बर्फ और ओले बनते हैं, जो सूरज की रोशनी को स्कैटर करते हैं यानी प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, और नतीजा एक हरी आभा बादलों को ढक लेती है। तो दुबई के लोगों ने एक साथ मौसम के कई रूप देखे हैं, डराने वाले भी और हैरान करने वाले भी। लेकिन कुल मिलाकर सीमेंट कंक्रीट से पटा दुबई दिन भर इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट से डरा सहमा रहा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए, आपको समझ में आएगा कि दुबई के लोगों ने कैसे बीते 24 घंटे बिताए।
तबाही का ये मंजर रईसों की नई जन्नत दुबई से आया है, जो दुबई दुनिया भर के अमीरों और अरबपतियों के लिए पसंद का ठिकाना है। वहां भयंकर बाढ़ ने अपना आशियाना डाल रखा है। जिन शॉपिंग मॉल्स को देखकर लोग दुबई पहुंचते हैं, उनकी भव्यता आज बाढ़ के पानी में डूबी हुई है। जिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2400 घंटे जिंदगी गुलजार रहती है, जहां रोशनी की चमक से सब कुछ रौनक रहता है, दुबई के उस सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में पानी भर गया है। इस कदर पानी भर गया है कि एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। तबाही वहां ऐसे नाच रही है कि सड़कें पानी की मनमानी से टूट गईं। बर्बादी का मंजर ऐसा है कि बाढ़ की तेज धार में कारें बच्चों के खिलौनों की तरह बहती नजर आ रही हैं। जिस मेट्रो ट्रेन से दुबई के एक इलाके से दूसरे इलाके तक लोगों का आना जाना लगा रहता है, उस मेट्रो के स्टेशन्स में बाढ़ का पानी घुस आया है। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक बारिश सोमवार रात को शुरू हुई और मंगलवार शाम तक इतना पानी बरसा जितना पूरे 1.5 साल में बरसता है। यूएई से पहले ओमान के अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी दी थी और बताया था कि देश में पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दुबई के अलावा बगल के देश ओमान में भी बाढ़ ने ऐसा कहर मचाया है कि 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। जो दुबई अपनी रंगत और रौनक के लिए दुनिया में मशहूर है, वो आज सैलाब के दबाव में मजबूर है। वो मजबूरी उसकी बर्बादी के रूप में दिख रही है।
जिस इलाके के लिए पीने का पानी तेल से कम कीमती ना हो, वहां इतना पानी बरस जाए तो सब हैरान होंगे। सवाल यह है कि संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान में इतनी बारिश हुई क्यों? इसके कई कारण हैं। इसकी वजह एक बड़ा तूफान है जो अरब पेनिनसुला यानी अरब प्रायद्वीप से ओमान की खाड़ी की ओर जा रहा था। इसी मौसमी चक्र के कारण हवाएं नमी से भारी बादलों को ओमान और दक्षिण पूर्व ईरान की ओर भी ले गई और वहां भी भारी बारिश हुई है। मौसम के जानकार ग्लोबल वार्मिंग को भी इस एक्सट्रीम वेदर इवेंट यानी चरम मौसमी घटना की वजह मान रहे हैं, जो आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी। इंपीरियल कॉलेज लंदन के ग्रैंथम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज के मौसम वैज्ञानिक फेडरिक ऑटो के मुताबिक इस बात की बड़ी संभावना है कि ओमान और दुबई में विनाशकारी बारिश के पीछे मानव जनित क्लाइमेट चेंज भी वजह है, यानी इस घटना के पीछे इंसान की ओर से लगातार हो रही लापरवाही भी जिम्मेदार हो सकती है। इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम सभी मिलकर जिम्मेदार हैं। दुनिया के किसी भी इलाके में प्रकृति से हो रहे खिलवाड़ का असर हजारों किलोमीटर दूर तक दिखाई देता है। कुछ जानकार कह रहे हैं कि अचानक हुई इतनी बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग भी वजह हो सकती है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी संभावना जताई है। मौसम विभाग के एक विशेषज्ञ अहमद हबीब ने ब्लूमबर्ग को बताया कि क्लाउड सीडिंग के लिए बने विशेष विमानों ने बीते 2 दिनों में संयुक्त अरब अमीरात के ऊपर क्लाउड सीडिंग के लिए 6 बार उड़ान भरी। हालांकि क्लाउड सीडिंग के लिए जिम्मेदार संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय मौसम केंद्र ने इस संभावना को गलत बताया और कहा कि उसने तूफान से पहले और तूफान के दौरान क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन नहीं किए और यह बारिश कुदरती है। यूएई के राष्ट्रीय मौसम केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल उमार अल यजीदी ने कहा कि क्लाउड सीडिंग का मूल सिद्धांत यह है कि आपको बारिश से बहुत पहले ही बादलों में सीडिंग करनी पड़ती है, लेकिन अगर भयानक तूफान की स्थिति हो जाए तो क्लाउड सीडिंग के लिए काफी देर हो जाती है। दरअसल पानी के लिए तरसने वाले संयुक्त अरब अमीरात में 2002 से क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन किए जाते रहे। क्लाउड सीडिंग दरअसल कृत्रिम बारिश कराने का तरीका है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर एक केमिकल सिल्वर आयोडाइड को विमानों के जरिए ऊपर बादलों के बीच स्प्रे किया जाता है, लेकिन इसके लिए बादलों में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। सिल्वर आयोडाइड के ये कण एक न्यूक्लाई का निर्माण काम करते हैं, जिसके चारों ओर पानी के कण जमा होने लगते हैं और बूंदें बनती हैं, जो भारी बारिश होने पर नीचे बारिश के तौर पर गिरती हैं। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल की जगह पोटेशियम क्लोराइड जैसे कुदरती सॉल्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार क्लाउड सीडिंग नहीं की गई, ये संयुक्त अरब अमीरात ने साफ किया है। चलिए, बारिश कुदरती वजह से हुई, लेकिन दुबई का यह हाल क्यों हो गया? जानकार बता रहे हैं कि दुबई के शहरी सिस्टम का बड़ा हिस्सा ऐसी बारिश के लिए तैयार ही नहीं है। दुबई जैसे आधुनिक शहर तक के बुनियादी ढांचे में ड्रेनेज का सिस्टम बहुत सीमित और नाकाफी है, क्योंकि दुबई में इतनी बारिश होती ही नहीं है जिससे होकर बारिश का पानी, जिस ड्रेनेज सिस्टम से होकर बारिश का पानी आगे निकल जाए और समुद्र में मिल जाए। और ये तो ऐसी बारिश रही जो अच्छे से अच्छे सिस्टम का इम्तिहान ले सकती है। दुबई और आसपास के इलाकों को डुबाने वाली इस भारी बारिश की वजह पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा जुड़ रहे हैं। शर्मा जी, पहला सवाल तो यही कि यूएई, ओमान, बहरीन में जो भारी बारिश मंगलवार को देखी वो अभूतपूर्व है, देखने को नहीं मिलता है इस रेगिस्तानी इलाके में। आखिर इस सूखे इलाके में अचानक बारिश क्यों हुई? क्या कहता है आपका विज्ञान, मौसम विज्ञान?
बिल्कुल ठीक, आपने सही कहा बिल्कुल, कि ड्राई लैंड एरिया है, एरिड एरिया है, जहां साल भर में मुश्किल से कहते हैं करीब करीब 10 से 12 सेंटीमीटर बारिश होती है सामान्यता, वहां 14 सेंटीमीटर बारिश हो जाना यानी कि करीब करीब आपका 1.5 साल की बारिश एक दिन में हो जाना, तो ये बिल्कुल अभूतपूर्व है और सही बात है। और उसके लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल बना नहीं हुआ उस तरह से, तो नेचुरली जब इतनी ज्यादा बारिश 24 घंटे में यानी कि 14 सेंटीमीटर एक रेगिस्तान एरिया में हो जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ना हो उसके लिए, तो नेचुरली बाढ़ जैसी समस्या और वाटर लॉगिंग जो है वो उत्पन्न हुई, और आपने सब जगह देखा ही टीवी चैनल्स में और सभी जगह दिखाई पड़ रहा था। तो ये बिल्कुल अभूतपूर्व है, और जैसा कि उनका रिकॉर्ड कहता है कि 1949 से जब से उनका रेनफॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है उसमें ये अभी तक का हाईएस्ट रेनफॉल इवेंट है 24 आवर्स का उनके हिस्ट्री में, तो बिल्कुल सही बात है, ये एक एक्सट्रीम इवेंट है। जी,
केवल एक्सट्रीम वेदर इवेंट इसको मानना चाहिए शर्मा जी, या फिर इसके लिए क्लाइमेट चेंज को आप कितना जिम्मेदार मानेंगे?
देखिए, ये एक्सट्रीम इवेंट है कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 1949 से अभी तक तो हुआ नहीं था, एक बात। दूसरी बात है, जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है, कुछ लोगों का मानना है कि भाई देखिए वार्मिंग 1 डिग्री से ज्यादा हो चुकी है, और नेचुरली जब 1 डिग्री वार्मिंग होती है तो उससे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंटेंट 7 डिग्री बढ़ जाता है, 7%, 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ता है एटमॉस्फेयर में तो 7% मॉइस्चर और ज्यादा होल्ड कर सकता है वो। तो लोगों का मानना है जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ज्यादा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में मतलब होल्ड कर सकता है, और उसके चलते जो है हैवी रेनफॉल इवेंट जो आगे बढ़ेंगे, जो कि एक क्लाइमेट चेंज का एक इंडिकेशन है। मगर अभी जिस समय इस समय की बात करें तो हम यदि देखते हैं कि ये बारिश क्यों हुई, एक तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म वेदर सिस्टम मूव कर रहा था अरेबियन पेनिनसुला से अक्रॉस गल्फ से, तो नेचुरली मॉइस्चर उसने काफ़ी सारी पिकअप करके रखा था, और पूरे आप देखेंगे तो ओमान, इवन सदरन जो तेरान है वहाँ तक भी ज़बरदस्त बारिश हुई है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अक्सर आप देखते हैं कि दुबई एक सेंटर है जहाँ पर अक्सर ये जो आपके क्लाउड सीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी चलते रहते हैं, तो कुछ लोगों का मानना ये भी है कि भाई सिस्टम तो मूव कर रहा था, एक्चुअली लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा कि भाई इतनी बारिश देगा, और उतने में यदि बाई चांस किसी ने कोई क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट भी वहां किया हो, जैसा कि कुछ लोगों का मानना किया गया था अभी पिछले कुछ दिन पहले, हाल ही में 1-2 दिन पहले ही, तो हो सकता है उसने भी इसको जो है एज ए कैटलिस्ट का काम करा और रेनफॉल को कुछ एरियाज में एनहांस कर दिया, वो भी हो सकता है, मगर वो तो आप गवर्नमेंट की जो मीटरोलॉजिकल एजेंसी है उनको कॉरोबोरेट करना होगा, उनको बताना पड़ेगा क्या वाकई में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए या किसी प्राइवेट एजेंसी से करवाए, यदि ऐसा है तो उसका भी एक रोल है, अन्यथा यदि कोई क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए और इस तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं तो इसका मतलब ये एक्सट्रीम इवेंट है, हो सकता है ये नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का पार्ट भी हो, क्योंकि बहुत लंबा डेटा नहीं है वहाँ पर, हालांकि 49 से 2024 तक एक काफ़ी लंबा पीरियड हो जाता है, मगर फिर भी जब हम क्लाइमेट की बात करें तो नेचर में तो कोई ऐसा वो नहीं है ना, 100, 200 साल, 300 साल भी बाद भी कोई इवेंट रिपीट हो सकता है, तो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का हो सकता है, मगर 1-to-1 कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की कह नहीं सकता कि भी ये जो वर्षा हुई है क्लाइमेट चेंज के कारण ही हो रही है, मगर जिस तरह के मैंने बताया कि सिग्नल मिल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के और जिस तरह की कहते हैं मतलब कि लिंकेजेस हैं, कुछ लोगों का मानना है बट स्ट्रेट अवे आप उसको 1-to-1 लिंकेज नहीं कर सकते कि दिस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज।
लेकिन शर्मा जी ये भी तो है कि क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, हम लोग जंगल काटते जा रहे हैं आधुनिकता आधुनिक होने के नाम पर, जगह जगह पर ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की बात आती है, जिस तरीके से एयर कंडीशनर का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, क्या इस तरह की अचानक मौसमी बदलाव वाली घटनाओं के आने वाले वक्त में और बढ़ने का अंदेशा भी है?
नहीं देखिए, जिस तरह से लोगों का मतलब ये मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हो रहा है, तो कुछ वैज्ञानिकों का बिल्कुल मानना ऐसा है कि आने वाले दिनों में एक्सट्रीम वेदर इवेंट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने लिंकेज दिया कि वार्मिंग होती है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और नेचुरली उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकता है एटमॉस्फेयर, और उसको राइट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मिल जाए, कोई वेदर सिस्टम स्ट्रांग आ जाता है, तो ऐसे समय में जो है उसकी जो प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ जाता है, एक्सट्रीम इवेंट होने की जो जो पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो यही कारण है कि साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले मतलब इस सालों में इस तरह से यदि हम बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो रहा, यानी कि हम ग्रीन हाउस गैसेस जिस रेट से प्रोड्यूस कर रहे हैं करते रहे, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है और बढ़ेगी, और वो बढ़ती है तो नेचुरली उसके चलते क्लाइमेट चेंज होगा और एक्सट्रीम इवेंट्स जिस तरह के अभी देखने में आए बढ़ सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आनंद शर्मा जी, थैंक यू सो मच, आपने समझाया कि क्यों होती है ऐसी बारिश, क्यों ऐसी अचानक दुबई को और बहरीन को इतने ज़्यादा प्राकृतिक आपदा का कल झेलना पड़ा। आगे बढ़ते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर, और ये मामला है नक्सली हिंसा का। लोकसभा चुनावों से ठीक 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 29 माओवादियों को मार गिराया है। मंगलवार को बस्तर डिवीजन के कांकेर जिले के बिना गुंडा के जंगलों में हुए इस हमले में सुरक्षा बलों के 3 जवान भी घायल हुए। खास बात यह है कि बस्तर में 19 अप्रैल को और कांकेर में 26 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। उससे ठीक पहले एक ही ऑपरेशन में इतने माओवादियों के एक साथ मारे जाने को सुरक्षा बल एक बड़ी बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। बस्तर में किसी भी एक ऑपरेशन में मरने वाले नक्सलियों की यह सबसे अधिक संख्या है। एनडीटीवी के पास ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिनमें साफ दिख रहा है कि गोलियों की गूंज के बीच सुरक्षा बलों ने बहुत जाबाजी के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
एकदम आगे नहीं, आराम से आड़ लेते हुए। हाँ, पीछे से कोई फायर नहीं करेगा भाई।
ये आवाजें जो आप सुन रहे थे सुरक्षा बलों की थी, और ये वीडियो भी सुरक्षा बलों ने ही तैयार किया था कल जब इस ऑपरेशन को वो अंजाम दे रहे थे। जिस जगह ये मुठभेड़ हुई वो नक्सलियों का पुराना गढ़ रहा है। ये इलाका अबूझमाड़ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले और उत्तरी बस्तर की संयुक्त सीमा पर है। पुलिस को यहाँ सीनियर नक्सली नेताओं जैसे ललिता शंकर और राजू के मौजूद होने की खुफिया सूचना मिली। उसी के आधार पर बीएसएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स की 200 जवानों की टीम ने वहां ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। बीएसएफ के प्रवक्ता ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में 29 नक्सलियों को मौके पर मार गिराया गया। मारे गए नक्सलियों में कई बड़े नक्सली नेता भी हैं, जिनमें 25 लाख रुपए का इनामी माओवादी नेता शंकर राव भी शामिल है। इस दौरान बीएसएफ के 2 जवान और डीआरजी का 1 जवान घायल हुआ, जिन्हें हेलीकॉप्टर से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मारे गए नक्सलियों से 3 SLR राइफल, 1 AK राइफल, 2 पिस्तौल, 2 इंसास राइफल, 2 303 राइफल और काफी गोला बारूद बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों का दावा है कि मंगलवार के ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की परतापुर एरिया कमेटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, जिस पर सुरक्षा बलों और नागरिकों पर कई हमलों और कई गाड़ियों को धमाकों से उड़ाने का आरोप पहले से था। छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान एक आईईडी धमाके में एक बीएसएफ जवान के मारे जाने के पीछे भी परतापुर एरिया कमेटी के इन्हीं नक्सलियों का हाथ बताया जाता है। नक्सलियों के खिलाफ इस पूरे ऑपरेशन को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं। लक्ष्मण केवट को राष्ट्रपति पदक समेत बहादुरी के 7 पुरस्कारों से अब तक सम्मानित किया जा चुका है। माओवाद प्रभावित बस्तर में बीते 11 साल से तैनात बस्तर के आईजी पुलिस पी सुंदरराज ने इस मुठभेड़ पर और जानकारी दी।
अमूमन घायलों को इस तरह से अस्पताल में बात करना थोड़ा दुखदाई होता है और बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन सारी बातें करने के बाद यहाँ पर रमेश जी हैं बीएसएफ से, सूर्यकांत जी डीआरजी से। अब इनकी तबीयत ठीक है, हमने डॉक्टर से और इनसे भी इजाज़त ले ली है बात करने की और फिर इनसे ही समझने की कोशिश। रमेश जी कैसा लग रहा है अभी, तबीयत कैसी है अभी आपकी?
अभी ठीक है,
ठीक लग रहा है,
पहले से बेटर है।
पहले से बेटर है। कुछ आपको रिकलेक्ट कर पा रहे हैं कि 2 दिनों में क्या हुआ जीवन में, जो एनकाउंटर रहा था कैसे क्या शुरू, क्या इनपुट मिली थी, कैसे आप लोग गए थे, क्या हुआ वहाँ पर?
सर्च अभियान में तो हर बार हम जा रहे थे, तो था कि मुठभेड़ कभी भी हो सकती है, कहीं भी इतनी बार जा रहे हैं, तो उसी रूटीन ड्यूटी पे हम गए थे, उसी आधार पे था, तो इनपुट था कि वहाँ प्रेजेंस है उनकी, 100% मतलब प्रेजेंस है। तो सर्च करते हुए पहुँचे पहाड़ी के ऊपर, जो अपना कल्पर और हापटोला की पहाड़ी के बीच में, तो वहाँ जो आगे वाला बंदा था उसने देखा कि बंदे हैं वहाँ पर।
लगभग कितने दिखे होंगे बंदे आप लोगों
को? उसको तो दिखा, पर स्टार्टिंग में जैसे कोई दिखता तो एक आधा ही दिखता, जो उनका ओपी बैठा रहता वो दिखता। और वहाँ वैसे उस जगह का इनपुट भी था कि भाई यहाँ टेक SIP का PIB का सबका इनपुट था कि वहाँ नस्ली मूवमेंट है। उसी आधार पर उनको देख के हमने वहाँ घेराबंदी शुरू किया। घेरा करने के बाद में वो लोग इधर चारों तरफ से घेरने के बाद में तो इधर उधर भागेंगे, इधर उधर जैसे भागना की शुरू किया उन्होंने, उनके अब भागने के लिए कुछ तो करेंगे, फायर उन्होंने फायर शुरू किया। फायर करते इधर से जवाबी कार्रवाई में फिर हो गया शुरू, उतरी मैदान, मैदानी जंग बन गया।
तो आप लोग तो शायद सोमवार की रात में निकल गए थे ना कल पर के लिए?
15 तारीख को शाम को निकले थे।
15 की शाम को निकले?
जी, रात को निकले थे हम लोग।
तो रात को सबसे पहले कहाँ पहुँचे? थाना बेटिया के पास ही कुछ ब्रीफिंग हुई थी रात को 12-1 बजे।
मैं बेटिया थाना में ही था, मैं थाना बेटिया में, सीओ थाना बेटिया में था मैं। वहाँ से टीम हमारी वहाँ से निकली थी, पखानसूर से 2-3 जगह से आए थे, सारी टीमें एक जगह से लॉन्च होकर देखिए इस पार से तैयार होकर बाद में लॉन्च हुए हम लोग 15 तारीख को रात को। 16 तारीख को सवेरे जो एरिया था उसको 4-5 बजे तक हमने कॉर्डन कर लिया। उसके बाद जो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि यहाँ नक्सली थे, वहाँ उनके मिलने की था कि यहाँ मिलेंगे, लेकिन वहाँ थे नहीं। उसे अगले वाले टेकरी को अपने सर्च किया तो वहाँ उनके टेल साइन मिले थे कि रास्ते बर्तन खाना खाने का बर्तन वर्तन ऐसे कुछ मिले थे, चावल के थे उधर, ताजा आदमी का था। उसी के आधार पर हमने थोड़ा आगे और सर्च किया तो वहाँ उनकी होती है, और पहले भी था ही उम्मीद कि डिवीजन का डिवीजन जो मारा गया है उसके साथ मिलिट्री कंपनी के कुछ बंदे होंगे वहाँ पर, तो 10-15-20-25 आदमियों की सूचना थी पहले से। हालांकि उधर थे 30-35 के लमसम बंदे थे, उसमें 29 तो ढेर हो गए, 5-6 याद पहले भाग गए या फिर लास्ट में बचाव के बक्के मुझे।
सर्चिंग के दौरान बीनागुंडा कोरगुटे इलाके में माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। सर्चिंग में अब तक कुल 29 माओवादी कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। AK-47 इंसास SLR कार्बन 303 एवं काफी बड़ी संख्या में अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी घटनास्थल से रिकवर किए गए थे। मुठभेड़ में हमारे 3 जवान जो घायल हुआ उनका स्थिति अभी आउट ऑफ डेंजर है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किए गए थे। अभी भी आसपास इलाके में रीइन्फोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग की जा रही है।
सुंदरराज साहब के बयान के पहले आप इस मुठभेड़ में जो जख्मी हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर रमेश चंद्र से मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी की बातचीत भी सुन रहे थे। आगे बढ़ते हैं। पी सुंदरराज इस माओवादी इलाके में सबसे लंबे समय तक तैनात रहे हैं और उनका दावा है कि सरकार नक्सल समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर के कांकेर में हुई इस मुठभेड़ पर और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी।
छत्तीसगढ़ के इतिहास में 16 अप्रैल को एक बड़ा इनकाउंटर हुआ और जिसमें 29 माओवादी मारे गए, उनकी डेड बॉडी को भी रिकवर किया गया। हम ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं, NDTV के जो हमारे आसपास के जो संवाददाता हैं वो भी ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर कर रहे हैं, जिस इलाके में कल बड़ी घटना हुई है, तो घटना के कुछ निशान यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद शहरी जीवन में लोग नहीं देख पाते, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अंदरूनी इलाके में जब फोर्स पहुंचती है तो किस तरीके का यहाँ पे जब इनकाउंटर चलता है, जब जवान घायल होते हैं तो किस तरीके से उन्हें फर्स्ट एड मिलता है और जवान एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं। ये मुकेश, जिस तरीके के आप देख रहे हैं यहाँ पे बांस की बल्ली जो है और ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेचर है, ये कब उपयोग में आता है? क्योंकि इस इलाके में अक्सर इनकाउंटर होते रहते हैं, तो जवान इसका कैसे उपयोग करते हैं?
जी देखिए, चूंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसके साथ ही पहाड़ियों की पूरी श्रृंखला है, ऐसे में जब भी कोई एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर के बाद जो घायल जवान हैं उन्हें तुरंत फर्स्ट एड देने के लिए, हालांकि जवानों को इस चीज़ के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, जंगल में फर्स्ट एड दिया जाता है, उसके बाद फिर बेहतर उपचार के लिए उन्हें किसी भी सूरत में घायल जवानों को उस सड़क तक लाना होता है जिस सड़क तक एम्बुलेंस या बड़ा वाहन पहुंच सके। तो इस तरह का स्ट्रेचर तैयार किया जाता है, जुगाड़ का स्ट्रेचर होता है। आप देखेंगे उस पर कि कॉम्बैट वर्दी उस पर नज़र आ रही है, बल्लियां नज़र आ रही हैं, इसके साथ काली वर्दी जो नज़र आ रही है काला जो वर्दी नज़र आ रहा है दरअसल वो पट्टा होता है जो जवान आमतौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जाते हैं तो अपने फेस को कवर करते हैं, सर को कवर करते हैं, उससे जो है रस्सी के तौर पर उसे इस्तेमाल किया गया। उसके साथ कॉम्बैट जो वर्दी नज़र आ रहा है उसे स्ट्रेचर के लिए उस जवान को उस पर लेटाया गया होगा और इसी पे लादकर उस जवान को इस जगह तक लाया गया।
बस्तर के कांकेर में पहली बार एक साथ इतने नक्सली मारे गए। अगर पिछले 6 सालों की बात करें तो इस साल छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 79 नक्सली अब तक अलग अलग मुठभेड़ों में मारे गए हैं। 2019 में यह संख्या 65 की थी, 2020 में 36, 2021 में 47, 2022 में 30, 2023 में 24 और अब 2024 में अब तक 79 नक्सलियों को मारा गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक 18 आम लोग और 6 सुरक्षा बलों ने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई है। इन आंकड़ों से साफ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में काफी तेजी आई है। सुरक्षा बलों के मुताबिक इसी महीने 1 अप्रैल को भी छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 नक्सली मार गिराए गए थे। मोदी सरकार नक्सलवाद के खात्मे का दावा करती है और उसका कहना है कि नक्सलवाद शांति, विकास और युवाओं को जल भविष्य के रास्ते में एक बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। इसीलिए अब तक जो सुरक्षा बलों के मुताबिक इसी महीने के छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 13 नक्सलियों को मार गिराया गया। मोदी सरकार नक्सलवाद के खात्मे का दावा करती रही, उसका कहना है कि नक्सलवाद शांति, विकास और युवाओं के उज्जवल भविष्य के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर यह दावा किया।
कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था, 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे। सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं।
कांकेर जिले में नक्सल हिंसा की आशंका इतनी ज्यादा है कि 26 अप्रैल को होने वाली मतदान को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए 60,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों को वहां तैनात किया गया है। ताजा ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बल नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले अबूझमाड़ के जंगलों में घुस गए हैं और करीब 4,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला अबूझमाड़ का जंगल नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों तक फैला हुआ है और माना जाता है कि नक्सलियों के कई बड़े नेता इन जंगलों में अलग अलग जगहों पर शरण लिए हुए हैं। इस पूरे इलाके में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं माना जाता। बीते 3 दशक से अबूझमाड़ में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को घुसने नहीं दिया है और ये उनका ऐसा गढ़ रहा है जहां कोई उनकी मर्जी के बिना घुस नहीं पाता। सड़कों के अभाव में यहाँ अंदर घुसना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ हथियारबंद नक्सलियों की मौजूदगी के कारण सरकार यहां अपनी योजनाएं लागू नहीं कर पाती है, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने अबूझमाड़ में पहुंच बनानी शुरू कर दी है। इन जंगलों से होकर नक्सली छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा तक आ जा सकते हैं और उन राज्यों की सरकारों के लिए मुसीबत बने रहते हैं। भारत में माओवाद, जिसे बाद में नक्सलवाद कहा गया, उसका उदय 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी के 3 इलाकों से शुरू हुआ था। वहीं से इसे नक्सलवाद की पहचान मिली। किसानों के विद्रोह के तौर पर शुरू हुए इस आंदोलन में धीरे धीरे समाज के हाशिए पर रहे लोगों और आदिवासियों के मुद्दे शामिल होते गए और ये हथियारबंद आंदोलन हो गया जिसने सीधे तौर पर देश की सत्ता को चुनौती दी। हालात ये हो गए थे कि 2007 में एक अनुमान के मुताबिक नक्सलवादी आंदोलन देश के आधे राज्यों तक फैल चुका था और भारत का 40% इलाका उससे कम या थोड़ा ज्यादा पर प्रभावित हुआ था, यानी करीब 92,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर नक्सलवाद का असर। इस पूरे इलाके को रेड कॉरिडोर भी कहा गया, लेकिन फिर केंद्र और राज्य सरकारों की सख्ती बढ़ी तो नक्सलवाद पर काबू पाने की कोशिशें तेज हुई। नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष सुरक्षा बल बनाए गए। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज हुए और इसका असर भी दिखा। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि लाल रंग के इलाके वो हैं जो नक्सलवाद से अब भी काफी प्रभावित हैं। नारंगी रंग से दिखाए गए इलाके वो हैं जहां नक्सलवाद की पकड़ ढीली पड़ रही है और हरे रंग के इलाके अब नक्सलवाद के असर से काफी हद तक उबर चुके हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2024 तक नक्सली हिंसा से प्रभावित जिले महज 38 रह गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 15 जिले छत्तीसगढ़ में, 7 ओडिशा में, 5 झारखंड, 3 मध्य प्रदेश, 2 केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र और 1 जिला पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है। गृहमंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया है कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आएगी तो वो अगले 3 साल में नक्सलवाद की समस्या का पूरी तरीके से अंत कर देगी। पिछले साल दिसंबर में छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आने के बाद बस्तर में सुरक्षा बलों की तैनाती पहले ही काफी बढ़ा दी गई है। सरकार इस मुहिम में कितनी कामयाब होगी इस पर सुनते हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी आर के विज की राय।
ये अभी जो पुलिस का जो अग्रेसिव पोस्चर है वो लगातार जारी रखना पड़ेगा। अभी 3-4 महीने से जो बदलाव देखा गया है ये जो क्रम है इसको जारी रखना होगा। जो इंटेलिजेंस बेस्ड हमारे जो ऑपरेशन है, वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस हैं, ये जारी रखने होंगे। और एक चीज और भी देखना होगा कि अभी कई इलाके ऐसे हैं जहां हमारी पहुंच अभी कम है, तो उसमें पहुंच कैसे बढ़ाई जाए, वहां पर क्या और फोर्सेस की जरूरत है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करना, ये सारी चीजें अभी और जरूरत होंगी। तो ऑपरेशन बढ़े हैं और पुलिस का जो अग्रेसिव पोस्चर बढ़ा है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अभी अच्छा काम कर रही है, तो मुझे लगता है ये इसको अभी जारी रखना होगा। बहुत जल्दी खात्मे की बात थोड़ा जल्दबाजी होगी अभी कहना मेरे लिए।
नक्सलवाद से निपटने में सरकार कितनी कामयाब हो पाई है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर। झारखंड का बड़ा इलाका भी नक्सलवाद का शिकार रहा है। निर्मल कौर पूर्व डीजीपी हैं झारखंड की, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या आपको लगता है कि नक्सलवाद की समस्या पर जल्द ही पूरी तरीके से काबू पाया जा सकता है जैसा मोदी सरकार बार बार दावा करती है?
जी, ये बहुत पुरानी समस्या है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, परंतु एक बड़ा स्वागत योग्य ये जो है कि पहली बार इतनी बड़ी सफलता अर्धसैनिक बलों को, पुलिस को मिली है, तो इससे बहुत एक पॉजिटिव संदेश आता है, लगता है शीघ्र ही खात्मा हो जाएगा। पर इसकी लड़ाई सिर्फ सशस्त्र लड़ाई नहीं है, आप दुश्मन से नहीं लड़ रहे, यहाँ तो आपको थोड़ी बहुत सॉफ्ट लड़ाई भी करनी है, विचारात्मक लड़ाई करनी है, लोगों को अपने साथ मिलाना है और जो आदर्श आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, उसको भी सही करना है। और विचारधारा की जो लड़ाई है और उसके अलावा जो कारण है जो युवाओं को धकेलते हैं नेक्सलिज्म की तरफ, जैसे कि बेरोजगारी हुआ या असंतुलन हुआ या आर्थिक जो है एकदम इम्बैलेंस वो हुआ या शहरों का बढ़ता प्रभाव है, कंज्यूमरिज्म का बढ़ता प्रभाव है, उन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है और संस्कारों की तरफ लौटने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा कि ये जो मोदी सरकार ने बहुत अच्छा जो कदम लिया है और इतनी बड़ी सफलता भी मिली है, तो मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, सरकार का परिवर्तन, अब अर्धसैनिक बलों को और उनको एक अच्छा, मतलब एक अच्छा माहौल दिया जा रहा है, एक ऐसी एनवायरनमेंट दी जा रही है कि वो अपना बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं।
मैम, नक्सलवाद की समस्या सिर्फ सुरक्षा की मानी जाए तो शायद गलत होगा, कहीं ना कहीं इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण भी रहे। क्या आपको लगता है कि सरकार की योजनाएं उन सभी वजहों को दूर कर पा रही हैं जो नक्सलवाद के फैलने का कारण बने?
कई योजनाएं हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन का कारण बनी है, आर्थिक उन्नति के कारण बनी है, सामाजिक परिवर्तन भी हो रहे हैं, जैसे कि स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियों की निधि है, अपने पास डोर दीदी आई, लखपति दीदी आई, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे कि सशक्तिकरण हो रहा है, और एक महिला का सशक्तिकरण मेरे ख्याल से 100 पुरुषों के सशक्तिकरण के बराबर है। तो जहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, पुरुषों का और पूरे समाज का सशक्तिकरण स्वतः हो जाएगा, और इन स्कीम्स का इनमें बहुत बड़ा योगदान है। और वैचारिक लड़ाई जो लड़नी है उसके लिए भी आपको आर्थिक उन्नति भी चाहिए, और जो कि इन सब स्कीम्स के माध्यम से हो रहा है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति भी हो रही है, क्योंकि आप अवेयरनेस ला रहे हैं, आप सरपंच हैं, मुखिया हैं, महिलाएं मंत्री हैं, पहले सरपंच पति होते थे, धीरे धीरे वो कस्टम समाप्त हो रहा है, महिलाएं खुद अपने अधिकार में आ रही हैं और वो समझ रही हैं किस तरह से शासन है। इवन जो अनपढ़ लेडी है वो बहुत समझदार है, गाँव में बुद्धिमान है, उसकी जो प्रैक्टिकल सेंस ऑफ विजडम है कई एमए पास लोगों से अच्छी है।
थैंक यू मैम बात करने के लिए। फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है। फायरिंग के दोनों आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है कि राजस्थान में काले हिरण का शिकार करने के कारण सलमान उसके निशाने पर है, क्योंकि काले हिरण को बिश्नोई समाज पवित्र मानता है, पूजा करता है। लेकिन सवाल ये कि सलमान खान के पीछे पड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मकसद सिर्फ काले हिरण के शिकार का बदला है या फिर मुंबई में खत्म हो चुके अंडरवर्ल्ड पर अपना कब्जा जमाने का। देखिए ये रिपोर्ट।
गोली अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर चली, लेकिन चुनौती सीधे मुंबई पुलिस को दी गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस का दावा रहा है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है। उसका कहना है कि 2015 तक जबरन वसूली के मामले 100 के करीब आते थे, वो घटकर अब इक्का दुक्का हो चुके हैं। छोटा राजन से लेकर रवि पुजारी, एजाज लकड़ावाला और सुरेश पुजारी जैसे डॉन विदेशों से डिपोर्ट कर जेल में डाल दिए गए हैं। डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील जरूर बाहर हैं, लेकिन अब वो जबरन वसूली में कम, ड्रग्स और सट्टेबाजी में ज्यादा सक्रिय हैं। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और देश के सबसे बड़े उद्योगपति, कारोबारी और अभिनेता यहीं रहते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कारोबार भी खूब फल फूल रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं ये सब जबरन वसूली के लिए तो नहीं कर रहा। मुंबई पुलिस तो इस मामले में चुप है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शायद इस खतरे को भांप चुके हैं। इसीलिए अभिनेता सलमान खान और उनके परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए लॉरेंस बिश्नोई को उन्होंने सीधे चेतावनी दी कि वो मुंबई में किसी की दादागिरी चलने नहीं देंगे।
जो भी इसमें शामिल है उसको बिल्कुल उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर से ऐसी हिम्मत मुंबई में किसी के ऊपर ना करे, ऐसा पुलिस कार्रवाई। ये महाराष्ट्र है या मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है, ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है, और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग बिल्कुल।
वैसे मुंबई पुलिस ने अभी फायरिंग केस में ना तो लॉरेंस बिश्नोई और ना ही उसके भाई अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाया है, लेकिन कोर्ट में इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताते हुए अनमोल बिश्नोई की सोशल मीडिया पर पोस्ट का जिक्र जरूर किया है। सवाल यह भी है कि अगर सलमान खान को वाकई में मारना था तो ईद का दिन क्यों नहीं चुना, क्योंकि उस दिन सलमान खान अपनी बालकनी से अपने चाहने वालों के सामने आते हैं। लेकिन शूटरों ने तब फायरिंग की जब वो घर में सो रहे थे और बिल्डिंग के बाहर कोई नहीं था, यानी सिर्फ दहशत फैलाना ही मकसद था। कहते हैं किसी शहर में अगर अपनी दहशत फैलानी है तो उस शहर के सबसे मशहूर और मजबूत शख्सियत को निशाना बनाओ, दूसरे लोग ऐसे ही डर जाते हैं। साबरमती जेल में बैठा लॉरेंस बिश्नोई कहीं यही खेल तो नहीं खेल रहा। मुंबई से कैमरामैन कल्पेश कसालकर साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो आज मेरे साथ फिलहाल खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।